اگلی سورت شروع کریں گے، سورت قمر. بسم اللہ الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نفس سلم سے ایک معجزہ مانگا تھا انہوں نے کہ یہ چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، اور وہ ہو گیا. اللہ نے اسی چیز کو قیامت کے آنے کی دلیل بنا کر پیش کر دیا کہ جو رب اس دنیا میں یہ بات کروا سکتا ہے، کیا پھر وہ اصل میں قیامت کو نہیں لا سکتا؟ اور حقیقت ہے کہ سورت قمر کے اندر یہ منظر پڑھنے کے بعد، ہم سب کو دیکھنے کے بعد، قیامت کے بارے میں اگر ہلکا سا بھی شبہ یا کوئی شک تھا تو اس کو دور کر لینا چاہیے کہ قیامت آ کے رہے گی. فرمایا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے، منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ہائی لائٹ کریں گے یہاں لفظ وَتَّبَعَهُمْ. مسلسل ہر صورت میں آپ یہ لفظ پڑھیں تو گویا کہ قرآن پاک کے تکمیل کی طرف پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ابھی تک تمہاری خواہشات نفس اللہ کی ہدن کے تابع نہیں ہوئی تو فکر کر لو. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر ڈراوے ان پر کارگر نہیں ہوتے. پس نبی ان سے رخ پھیر لو. قیامت کا منظر. ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلے، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے. یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. 3 سیکنڈ تک اپنے آپ کو سوچیے کہ میں اس وقت کیسی لگ رہی ہوں گی. کسی ڈاکیومینٹری کا کوئی سین ذہن میں آ رہا ہے، سچی بتاؤں. کیسے لوگ خوف زدہ ہوں گے، ہراساں ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ابھی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کس طرح سے یہ معاملات بکھریں گے. ایک چھوٹی قیامت جو حضرت نوح کی قوم پر آئی تھی، اس کا ذکر ہے آگے. کذبت قبلہم قوم نوح. ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا. ذرا نوٹ کیجئے گا، نوح جیسے شخص جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنے پیار سے ذکر کریں، قوم نے ان کو کیا کیا ٹائٹل دیے. پہلا جھوٹا. آپ بڑے جھوٹے ہیں، اپنے اوپر لیجئے. بلکہ آپ یہاں سے پڑھ لکھ کے 2-2.5 سال کے بعد آپ نکلے اور آپ نے کہا بس اب تو میں درس دیا کروں گی، انشاءاللہ دیں گے. اب آپ بڑے طباق سے گئیں درس دینے، آپ نے وہاں اپنی چیزیں لگائیں، سجائیں، بات شروع کی، پیچھے سے ایک بولتا ہے اور جھوٹھی چپ کر جا، ہمیں پتہ جھوٹ بولتی ہے. اور آگے جو دوسرے لفظ ہیں اس کو بھی اپنے اوپر لیں گے نا، پھر چوٹ پڑے گی. نوح کا درد تو ہم اتنا نہیں لے پاتے نا اپنے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے نوح کو کہا جھوٹا، اور ساتھ ہی کہا یہ دیوانہ ہے، کوئی آپ کو دیوانی، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. اس آیت پہ تو میرا دل کہتا ہے میں روک کہ سنت ہے حضرت نوح کی. اگر آپ کی خاطر بے قدر ہو رہے ہیں نا آج، تو غم نہ کریں، وہ قدر کی حد کر دے گا. وہ حدیث قدسی کئی بار آپ کو سنائی گئی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ تو میری راہ میں چل کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، تو میری راہ میں بک کے تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں. ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس قرآن نے ہماری قدر بڑھا دی. حضرت ابو ہریرہ خود کو کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو کیا تھا، قبیلہ دوس کا ایک غلام. تیری یہ اوقات تھی کہ لوگ جہاں رکیں تو بھی رکے، ان کے لیے کھانا پانی رکھ، ان کی جگہ بنا، ان کے جانوروں کو پکڑ، پھر جب اٹھ جائیں تو ان کے ساتھ چلنے لگے، یعنی غلام جو کرتے ہیں. اور اسلام نے تجھے اتنی عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. تو اگر علم کے راستے میں تھوڑی سی بے قدری ہو، اور سسٹرز بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو دین کی طرف آتی ہیں، بس ایک بات ان کی دوست نے کسی محفل میں ان کو کہہ دی، یہ کیا کر لیا، یہ کدھر چل پڑی، بس رو کے واپس آئیں گے، آج کے بعد پھینکو، اتارو، چلو جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ واپس، کیونکہ مجھے اپنی دوستوں کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی. اکثر کامن تھنگ جو دیکھی گئی ہے دین کی طرف نئے نئے آنے والوں کی زندگی کی، وہ کیا کہ لوگ پھر ان کو دعوتوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، مہندیوں میں چھوڑ دیں گے کہ یہ تو آ کے اب تنقید ہی کریں گی. تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ نے کیوں ہر وقت اپنی جان پہ بوجھ لاد کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح کو تو جھڑکا بھی گیا. فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے لے. امت مسلمہ کو دعا سکھائی جا رہی ہے، کبھی انڈیویجل لیول پہ یا اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کو برا کہا جائے، یہی دعا مانگے کہ رب انی مغلوب فانتصر، میں تو نہیں بدلہ لے سکتی نا، تو لے لے میرا. फिर क्या हुआ इसका जवाब सुनिए। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी इस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने इन तख्तों वाली और कीलों वाली पर सवार कर दिया कश्ती जो हमारी निगरानी में चल रही थी। नोट कीजिएगा इस जुमले को, हाईलाइट कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसालिमन का ना कुफिर, ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई। पीछे क्या था? वज़्दुजर, नूह को लोगों ने डांटा उसकी नाकदरी की। अल्लाह ने एक बंदे की नाकदरी करने की सजा पूरी दुनिया में उस वक्त के जो लोग थे उनको डुबो दिया, यानी पूरी कौम की हलाकत की सूरत में हो गई। क्या पता चला कि जब अल्लाह आपकी कदर करता है ना, तो फिर वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं जो लोगों के आपसे नाराज होने की वजह से होती हैं। तो फरमाया, ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी ना कदरी की गई। इधर तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया को डुबोया सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे नूह को डांटा क्यों। एक मोमिन अल्लाह की नजरों में इतना कीमती है, अल्लाह में सच्चा मोमिन बना दे। इस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, फिर कोई है जो नसीहत कबूल करने वालों? अब इशारे मिल रहे हैं इस कश्ती के निकलने के। और याद रखिए, जैसे फिरौन की लाश डिस्कवर हो गई है ना, आज तक तो नहीं थी, ये भी पिछले चंद सालों में नहीं हुई ना, इसी तरह इस आयत के मुताबिक एक वक्त आएगा कि दुनिया वाले हजरत नूह की वो टूटी फूटी कश्ती भी देखेंगे जूदी पहाड़ पे। बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री किसी टीवी पे आई थी तो मुझे किसी ने 1-2 महीने पहले भेजी थी, तो उसमें उन्होंने पूरा उसको आर्टिकुलेट किया हुआ था कि किस तरह से वहां लोगों को ऊपर से कोई कश्ती देखी और ये और वो है। तो एक वक्त आएगा ये डिस्कवर होगी और उसको देखकर भी लोग मुसलमान होंगे कि कुरान में इसका जिक्र है। जैसे आज कई लोग फिरौन की बातें सुनते हैं जो, और कुरान में उसकी खबर देखकर वो मुसलमान होते हैं। पीछे आपको सुनाया था कि जब फिरौन की लाश डिस्कवर हुई थी तो वो नमक से भरी हुई थी, पट्टियों से भरा हुआ था। तो जब उस डॉक्टर ने जिसने उसको ये सब किया था तो उसको बताया गया कि ये कुरान में, तो वो मुसलमान हो गया था। तो अल्लाह ये निशानियां दिखाएगा दुनिया को, याद रखिए। हम नहीं करते ना अपने दीन का काम, अल्लाह को परवाह नहीं। एक वक्त है साइंस लोगों को मुसलमान कर लेगी और एक वक्त है कि ये हिस्ट्री की बातें वाकयात की सूरत में दुनिया में आएंगी तो लोगों को पता चल जाएगा। फरमाया, ये तो है, तो लिहाजा क्या करो, अपनी फिक्र करो। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। अब आपको ये तकरार के साथ जुमला मिलेगा, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? हमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुरान बहुत आसान है, लेकिन यहाँ लफ्ज नोट कीजिएगा, मुद्दकिर, नसीहत लेना इसे बहुत आसान है। एक अदना दर्जे का कम पढ़ा लिखा शख्स देहात में रहने वाला भी इस किताब को जब पढ़ता है तो अपने लिए नसीहत ले लेता है, और एक बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल माइंड वाला शख्स जब इसको पढ़ता है उसको भी पता चलता है। तो ये कुरान लोगों के लेवल पे काम करती है। इसीलिए ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आम क्लासेस में ये नहीं चलता, लेकिन कुरान की क्लास में आप देखिए 18 साल की बच्ची भी बैठी होती है और 70-80 साल के भी बैठते हैं। मुझे आज तक कभी किसी ने ये कंप्लेन नहीं दी कोर्सेज जब हम ऑफर करते हैं कि उस्ताजा इन बच्चियों को तफसीर नहीं समझ आ रही। क्यों? इसलिए कि कुरान तो वो है जो रब का कलाम है, और गूंगे बच्चे को भी माँ की आवाज आ जाती है, गूंगा भी माँ के इशारे समझता है। तो लिहाजा कुरान से नसीहत लेने के लिए ना उम्र की कैद है ना लैंग्वेज बैरियर है। ये तो बस हर एक उसको आएगी जिसके दिल में इसकी तड़प होगी, और अल्लाह में इसकी तड़प लगा दे। आपने जुटलाया तो देख लो कैसा है मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने एक मुसलसल नहुसत के दिन सख्त तूफानी हवा इन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? पता चला कि कुरान की नसीहत से वही फायदा उठाएगा जो कबूल करने वाला दिल लेकर आएगा। समूद ने डरावों को झुटलाया और कहने लगे, एक अकेला आदमी जो हम ही में से, क्या अब हम इसके पीछे चलें? इसका इत्तबा हम कबूल कर लें तो इसके मानी ये होंगे कि हम बहक गए और हमारी अकल मारी गई। क्या हमारे दरमियान बस एक ही शख्स था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं, ये परले दर्जे का झूठ और बरखुदे गलत है। नाउज़ुबिल्लाह, देखिए नबियों के कितना मुंह लगते थे, आप इसकी शिद्दत को महसूस करें कि नबियों के बारे में कहते हैं ये झूठा है, ये खुद बड़ा बन के बैठ गया, अल्लाह ने नहीं इसको बनाया। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इनको मालूम हुआ जाता है कौन परले दर्जे का झूठा और कौन बरहुदे गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं, बस अब जरा सब्र के साथ देख लो कि इनका क्या अंजाम हुआ। इनको जता दे का पानी इनके और ऊंटनी के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा। आखिरकार इन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बेड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने इन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी भी बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। कभी कोई ऐसी खेती जिसकी फसल काट ली गई उसका तसव्वुर लाइए जहन में, तो फिर आपको ये बात वाजे हो सकती है कि अल्लाह ताला ने यहाँ क्या बात कही है, किस तरह से अल्लाह ताला उन चीजों को लेकर इन लोगों के सामने पेश करते हैं कि अपनी फिक्र करो, अपने आप को देखो कि किस तरह से तुम इस दुनिया में अल्लाह ताला के एक हुक्म के मुंतजिर हो। आज इंसान कितना अकड़ता है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाए और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को अल्लाह की पकड़ से पहले ही सीधा कर लें, वरना ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें इसी आयत के मिसाल के मुताबिक कर दे। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को भी इस तरह से किया था आज वो कहाँ होंगे, जरा सोचिए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? आप देख रहे हैं हर कौम की तबाही की बात है और अब जिक्र कुरान का। क्या पता चला कि आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा अगर इस तरह की सजाओं से और अल्लाह की पकड़ से बच सकती है तो उसका जरिया क्या है कि इस कुरान को नसीहत की किताब बना लो। हम नसीहत से ज्यादा इसको सवाब की किताब और खैर बरकत की किताब बनाते हैं। किताब का जो बुनियादी मकसद है वो नसीहत है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। और जब तक लोग किताब से नसीहत नहीं लेंगे इसके बाकी पढ़ने के फवायद भी नजर नहीं आएंगे। लूत की कौम ने तंबीहात को झुटलाया और हमने पथराव करने लिए हवा उस पर भेज दी, फिर लूत के घर वाले इससे महफूज रहे, उनको हमने अपने फसल से रात के पिछले पहर बचा कर निकाल दिया। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्र गुजार होता है। अल्लाह हमें भी शुक्र गुजार बना ले। वलकदन जरा हम बद शतना, लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया मगर वो सारी तंबीहात को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने अब उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने इनकी आंखें मोन दी, चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने इनको आ लिया, चखो मजा अब मेरे अजाब का और मेरे डरावों का। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, बस है कोई जो नसीहत कबूल करने वाला हो। लिखिए अपना नाम। अल्लाह जी मैं मौजूद हूँ, मैं नसीहत लेना चाहती हूँ। मैं इस किताब को नसीहत के लिए तो पढ़ रही हूँ, सवाब के लिए पढ़ना होता तो ये तो बड़ा आसान था, फिर तो मैं घर बैठ के भी पढ़ सकती थी। और अल्लाह ताला हमें इस किताब से नसीहतें लेने वाला बना दे और हम इसको अपनी जिंदगी की किताब बना लें और अल्लाह ताला इस पे गौर व फिक्र की दावत देता है। फिर फरमाया वलकद जाअ आले फिरौन नुज़ूर, और आले फिरौन के पास भी तंबीहात आई थी मगर उन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया। आखिरकार हमने इनको पकड़ लिया जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है। क्या तुम्हारे कुफार कुछ इन लोगों से बेहतर हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है? इन लोगों का कहना है कि हम एक मजबूत गिरोह हैं, अपना बचाव कर लेंगे, अन करीब ये गिरोह शिकस्त खा जाएगा। यानी जब अल्लाह की पकड़ आती है तो बड़ी बड़ी जमातें और गिरोह किसी के काम नहीं आते, और अन करीब ऐसा ही होगा। और उस वक्त क्या होगा, ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे। बल्कि इनसे निमटने के लिए एक असल वादे का वक्त तो कयामत है और वो बड़ी आफत और ज्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुबतला है और इनकी अकल मारी गई है। जिस रोज ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, इस रोज इनसे कहा जाएगा बचखो जहन्नम की लपट का मजा। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है, पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सों को हम हलाक कर चुके, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? वकुल्लु शयइन फअलूहु फिज़ ज़ुबुर, जो कुछ उन्होंने किया वो सब दफ्तरों में दर्ज है, हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। हाईलाइट करें, हर छोटी बड़ी बात लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। तो फिर मुझे और आपको अपनी फिक्र करनी है ना कि अल्लाह ताला मैं केयरफुल रहूं। और जितना ज्यादा इंसान अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बचाना चाहेगा उतना केयरफुल हो जाएगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़ादिर सिदकिन इंदा मलीकिन मुक्तदिर। आखिरी आयतों को नोट कीजिएगा जरा, क्या खूबसूरत मंजर है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, नफरमानी से परहेज करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे। फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर, सच्ची इज्जत की जगह बड़े जी इक्तदार बादशाह के करीब। क्या समझ आए, जन्नत बिल्कुल करीब बैठेंगे। इमेजिन तो कीजिए, आप जन्नत में, बहुत खूबसूरत मजलिस सजी हुई है। ये जो मलीक मुक्तदिर है ना, फरिश्तों की जमात, नेक लोगों की, पता नहीं वो क्या प्रोटोकॉल होगा जो अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को उस वक्त देंगे जब अल्लाह ताला से मिलेंगे। और आपको था कि जन्नत में जुमे का दिन जो है ना, उसका नाम यौमुल मजीद होगा, और जुमे के जुमे लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। आगे जाके आपको सूरह जुमा में एक हदीस लिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। वहां जब हम अल्लाह के पास होंगे तो क्या होगा? आज दुनिया में हम कितना तड़पते हैं बड़े लोग हमें बुलाएं, कोई बड़ा बुला तो ले, सबको बताते हैं मुझे भी बुलाया है, मुझे खत आया, और कभी आपको सदर ओबामा फोन करके बुला ले तो मेरा ले फौती हो जाए कि मुझे उन्होंने बुलाया, व्हाइट हाउस में आपकी दावत है। पता नहीं हम उसके लिए तैयारियां कितनी कर लें। और दूसरे मुल्क में रहने वालों को कोई बुला ले, वो पाँव के बल आने को तैयार है, चल के, लेट के, बैठ के, हम जा रहे हैं, हमें सदर जी ने बुलाया। तो इंदा मलीक मुक्तदिर,